नमो नमो श्री सिदानंद नमो नमो आयिर्यानम नमो नमो वज्रायानम नमो नमो लोये सभ्यसाहुनम बोलिए पंच पंडिति भगवान की, बोलिए 1080 भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए 108 परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर महाराज की, बोलिए 108 परम पूजाचार्य श्री नैमिषारण महाराज की, बोलिए परम पूज 108 मुनिवर श्री क्षमा सागर महाराज की। जो काहू विषधर डसो रुचसो नीर चबाए और निर्विष तन के होत ही नीर सुन न सुहाए। निर्विष तन के होत ही नीर बसन सुहाए। जैसे जुड़ के जोड़ सो भोजन की रुच जाए तैसे कुकरम के उदय धन बचन न सुहाए। तैसे कुकरम के उदय धर्म बचन लगे भूख जुड़ के गए रुच से करे आहार। लगे भूख जुड़ के गए रुच से करे आहार। अशुभ गए शुभ के जगे जाने धर्म विसार। भैया अशुभ करने को उदय हो थे सबको आउ थे ये अशुभ कर्म का उदय जे दिन का इस स्टेज पर बैठने को नहीं था नहीं आए। अब अशुभ कर्म का उदय चला गया सो जाने धर्म विसार। देखो धर्म में कितनी भारी महिमा है धर्म के धर्मात्मा जीव की। जिस प्रकार पाप का अंकुर एक बट वृक्ष के बीज में छोटा सा बीज है उससे कितना बड़ा भारी वृक्ष हो जाता है उसको क्या समझो पाप। और जैसे एक छोटा सा बीज है जिसने धर्म का बीज बोया है और वो कितना अंकुर हो जाता है बढ़ करके कि जिस प्रकार से अकीर्तन पुण्य से लगा करके अकीर्तन पुण्य से लगाकर और धन्य कुमार हो जाता है। एक दिन तो हुआ है अकीर्तन पुण्य भूखों मर रहा था और एक अंकुर का वृक्ष ऐसा लगाया कि मुनि महाराज के आहार के करवाने के उपरांत ऐसे मुनि महाराज मिले उसके लिए कि पक्षोपवासी मुनि राज जिनके भोजन करने से अक्षीण रिद्धि के प्राप्ति हुई वह खीर का पात्र खाली नहीं हुआ सारी बस्ती को भी खिलाई। और उसका कितना महत्व बड़ा उस जीव का कि वह मुनि राज के पास पहुंच करके व्रत ले लेता है, बड़ी खुशी खुशी में लेता है। अब मेरे लिए भगवान आप मिले उपदेश जनक हो, अब मैं कृतार्थ हो गया, अब तुम हमें ऐसी व्रत दो जिसमें हमारा कल्याण हो जाए। सब प्रकार से उसने श्रावक के व्रत धारण कर लिए और जीवन पर्यंत पालूंगा आपके वचनों के लिए, इस प्रकार से वह मुनि राज तो प्यार कर जाते हैं, श्रावक चल देते हैं, वह पीछे पीछे जाता है और अक्षमात उसको सिंह ने शिकार कर दिया। वह नवकार मंत्र पढ़ते पढ़ते स्वर्ग में देव हो गया, स्वर्ग से चयकर धन्य कुमार हो गया। और धन्य कुमार की कितनी महिमा है आपको पहले से दो दिन से सुनाई है, जन्म से लेकर अब। आज वह धन्य कुमार मुनि राज के प्रवचन सुनकर के, मुनि राज ने पूर्व की कथा सुनाई है कि तुमने निर्माण धन खाया था जिससे तुमने नरक की वेदना भी सही थी, कुष्ठ रोग भी हुआ था और अकृत्रिम पुण्य होकर राजा भी खत्म हो गया था, कुटुंब जन खत्म हो गए, सब प्रकार का भोग लिया। आखिरी में भगवान की ऐसी कृपा मुनि राज आए और उस दिन से भाग पलट गया। अब वह धन्य कुमार राजा की ही नगरी में जाता है, नगर के बाहर एक उगता हुआ बगीचा देखता है, बड़ी भारी बावड़ी देखता है, प्यास बहुत लगी है। वह धन्य कुमार उस बावड़ी की ओर बढ़ता है, जाकर के बावड़ी में जैसे ही सोचता बहुत गहरी बावड़ी है, नीचे पानी होगा, उसने थोड़ी सी छिड़िए उतर पाया कि बावड़ी का पानी नीचे से बढ़ता आकर उसके चरणों के आन झुक जाता है, वह वहीं बैठ जाता है। उसने पंच परमेष्टी भगवान का स्मरण किया, मुहां धोया, पानी पिया, थोड़ी विश्राम के लिए शांति के लिए रुक गया, वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया। और जब निकलता है बावड़ी में से तो क्या देखता है कि सारे वृक्ष तो सूखे थे, सारे वृक्ष हरे भरे, अमरूद फल रहे हैं, सब प्रकार के फल जो होते हैं फल रहे हैं और हरा भरा है। वह सेठ तत्काल आकर के हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, वह दयामित्र सेठ था। दयामित्र सेठ उस बगीचे को कटवाने के लिए सोच रहा था, सो मुनि राज ने कहा था कोई ऐसा पुण्यात्मा जीव आएगा उसके आने से तुम्हारे बावड़ी में पानी भर जाएगा और तुम्हारा बगीचा हरा भरा। अब वह कहता है आप मेरे पावने हैं, आप घर चलिए। सुधर्ण आ जाता है। पत्नी से कहता है मेरे भानन है, इनके भानन के समान सम्मान करना। उसकी बेटी थी कुसुमलता, बेटी सेवा में हाजिर रखती है, कब पानी चाहिए क्या चाहिए। दो दिन अपनी सहेली राजा की बेटी गुणवती के पास नहीं पहुंच पाई। अब मैं रीते हाथों कैसे जाऊं, दो दिन हो गए। फूल लान कर एक धागा रख दिया। धन्य कुमार ने सोचा इसकी माला तैयार करना होगी। उनने इस प्रकार की माला तैयार करके रख दी कि वह माला ले जाकर उसने राजा की बेटी को भेंट की। अरे बहन, तुम कहां रुकी, ये किसकी माला बनाई गई है। उसने संभाल कहा। दो चार दिन के बाद में एक दिन एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गए। उस सेठ की दुकान का एक गोदाम का माल कई साल से दरवाजा बंद था, कोई खरीदने वाला नहीं था। धन्य कुमार उसकी दुकान पर बैठे, इतने तो ग्राहक आते हैं, कहते हमने सुना कि तुम्हारे पास कोई ऐसा माल है। हाँ भाई है, तो ताला खोलो दरवाजे का। दरवाजे का ताला खोला गोदाम का, उनने वह माल खरीद लिया। उस सेठ ने सोचा ये बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, इसके बैठने से आज मेरा कितना शुभ कार्य बना है। उसने अपनी बेटी का संकल्प कर दिया कि मैं आपके लिए अपनी बेटी ब्याहूं। दूसरे दिन दूसरे सेठ के जाते हैं, उसके भी कोई काम सुधर जाते हैं। अरे जिन मंदिर में पूजा करते हुए धन्य कुमार राजा की बेटी आती है और धन्य कुमार को अप्रत्यक्ष में रूप देख करके विचार करती है, तो महापुरुष है कोई, मैं इन्हीं के साथ शादी कराऊंगी। अब संकल्प करती हूं मैं जैन भगवान के सामने, और मैं अन्य कुछ से नहीं कराऊंगी। सूचना कर देती है अभय कुमार, पुत्र अभय कुमार और बारीसेन दोनों कहते हैं कि ऐसे गैरचरित आदमी के साथ शादी करने को बहन कहती है। नहीं करेंगे, तुम कुछ भी करो बहन, हम तो कोई राजकुमार के करें। वह बेटी संकल्प कर लेती है कि मैं तो कराऊंगी तो इनके साथ ही कराऊंगी। दोनों भाइयों ने परीक्षा लेने को जुआ खेलने को बैठ जाते हैं, तो उस जुआ के सारे फल का धन जे जीत लेते हैं। और भी कई प्रकार से परीक्षा करते हैं। फिर बारीसेन कहते हैं एक काम करो, नगर के बाहर यक्ष का मंदिर है, उसी यक्ष के मंदिर में कोई जा नहीं पाता है, वह बतला दो इनके लाने से, जो निकलेंगे बाहर जो बेटी का जो मूड खराब हो गया है ठीक है। दोनों भाइयों ने विचार कर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। नगर निवासी या परदेशी कोई जो भी जो यक्ष के मंदिर में जाकर रात बिताएगा और प्रात काल सुरक्षित निकल कर आएगा, उसके लिए मैं अपनी बेटी दिलाऊंगा। और आजा राजा आजा राज भी दूंगा। ये तो निश्चिंत थे कि वहां से कोई निकलने वाला नहीं। धन्य कुमार, शाम के समय उस यक्षी मंदिर तरफ जाते हैं। बेटियां बहुत रोक लगवाती हैं। जे अपने पंच परमेश जी का स्मरण करते हुए जाके यक्ष के मंदिर के दरवाजे पहुंचते हैं और दरवाजे में हाथ लगाते ही दरवाजा खुल जाता है। भीतर पहुंचते हैं तो वह यक्ष खड़ा हो जाता है हाथ जोड़कर, जिसको आके संजय मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। कहता है हम इतने दिन से तुम्हारा ये धन रखाए बैठे हैं, चलिए आप भीतर के स्थान पर चलिए, भुवने में उस धन को संवारिए। अगर हम नहीं रखाते आज दिन तक तो आदमी सब उठा लेता। कई प्रकार के शस्त्र अस्त्र माला मुकुट उपकरणों से इनकी पूजा करता है, भेंट करता है और सारी संपत्ति रत्नों के भरे कलश और स्वर्ण के भरे घड़े सुपुर्द कर देता है और हाथ जोड़ता और कहता है अब मैं इस कार्य से अब मैं आज मुक्त हुआ हूं। सारी रात वह यक्ष सेवा करता है। प्रातः काल वह सारा धन उसे यक्ष मंदिर के दरवाजे के बाहर रखवा देता है, रख देता है। धन्य कुमार बाहर निकलते हैं, बाहर तो देखते हैं कि धन्य कुमार तो सुरक्षित निकला और साथ में कितना कितना धन भी बाहर रखा है। राजा श्रेणक पहुंचते हैं तो धन्य कुमार कहते हैं कि तुम कोई यशवारी भेजो या सामान उठवाओ। वह सारा धन गुणवती पुत्री के कमरे में पहुंच जाता है। राजा श्रेणक ने तत्काल मंडप की तैयारी करवाई और विधि विधान के अनुसार 8 कन्याओं के विवाह राजा की बेटी के साथ, उन सेठों की लड़कियों के साथ 8 विवाह करवा करके राजा ने नवीन महल रहने के लिए दिया और आजा राज अपनी बेटी दमाद के लिए सुपरत किया। ये क्या है? ये वही है जो हमने पहले कहा है कि इतने से बीजा बढ़ का और कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है। ये वही चीज है कि धर्म का वृक्ष लगाओ, धर्म का वृक्ष लगाओगे तो धर्म का फल भी बहुत बढ़ता है और पाप का वृक्ष लगाओगे तो बढ़िया के पेड़े के समान भी बढ़ जाता है। अरे धन्य कुमार उस नगर में अयोध्या राजा गृह में रहते कई वर्ष बीत जाते हैं। राजसभा में बैठते हैं, राजा बहुत सम्मान करते हैं। एक दिन धन्य कुमार के पिता धनदत्त सेठ कोई काम के बस उस राजा ग्रही नगरी में आए और उन्हीं के महल के पास से निकलते हैं। कर्ण की बड़ी विचित्र गति होती है, जाकर के धन्य कुमार के महल के ही चबूतरे पर बैठ जाते हैं। थक गए हैं, वृद्ध अवस्था है, बैठ जाते हैं। उसी समय धन्य कुमार झांकते हैं, अरे एक कौन बैठा है सामने? स्त्रियों से कहते हैं कि जी पिताजी बैठे हैं हमारे, पता लगा कर आए हैं। चलो तुम तैयारी करो, आठों रानियां आरती की तैयारी करती हैं और धन्य कुमार जाकर अपने पिता के चरणों में नमस्कार करते हैं। पिता मिल जाते हैं। अब पिता कहते हैं, हे पुत्र अब तुम चलो, वह धन हम कहां तक रखवाए बैठे? तुम्हारी अलग से हवेली में जो रखा है, राजा ने रखवाया था, अभी तक हमने रखाया, अब हमारी यह अवस्था है। धन्य कुमार जाते हैं, अब जाकर के वह धन छह ही भाइयों को बांट करके और कहते हैं, भाई देखो हम खाली हाथ जा रहे तुम्हारे नगर से। सब भाई कहते हैं, भाई जो क्या कर रहे हो, इसी के पीछे तो तुमने पत्थर मार के हमको बावरी में बिल्कुल मार डाला था, इसलिए इस धन को मैं संकल्प कर चुका हूं कि अब मैं नहीं छूंगा। और कुछ दिन राज करने के बाद धन्य कुमार ने अपने पुत्र को राज दिया और दीक्षा धारण करके मुनि हो गए। वे आठों ही रानियां आजका हो गई। सुबह तो स्त्री लंका छेद करके देर हुई और धन्य कुमार ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण पद को पाया। बोलिए भगवान
बोली देवा जी में गाय श्री आदि माधव भगवान की जय। अभी आपने पूज मुनि श्री अभ्यसागर जी महाराज की धर्म देशना सुनी और अपन को अब पूज मुनि श्री अभ्यसागर जी महाराज की मंगलवाणी सुनना है। इसके लिए मैं सकल दिगंबर जैन समाज आ रहा हूं, उनकी ओर से पूज मुनि श्री अभ्यसागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी आत्म कल्याणी वाणी के माध्यम से हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। पूज मुनि श्री अभ्यसागर जी महाराज जी।
ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देव की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, पूज मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। समय ज्ञान का प्रसंग चल रहा है और उसके अंतर्गत जो अनियोग द्वारों का विभाजन आचार्य श्री समंत पद्मभार भगवान ने किया है, उसमें से दो अनियोगों का वर्णन समझ चुके हैं, शेष दो अनियोग द्वारों का प्रसंग सामने है। इसमें से आज तीसरा जो अनियोग है, जिसे यहाँ चरणानियोग कहा जा रहा है, उसका स्वरूप देखें। ग्रह मेद्यनगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धिरक्षांगम चरणानियोग समयम् सम्यक् ज्ञानं विजानाति ग्रहमेद्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षांगम् चरणानियोग समयम् सम्यक् ज्ञानं विजानाति। सम्यक् ज्ञानं विजानाति यानी उसे सम्यक् ज्ञान जानना चाहिए, जानते हैं। कौन जानते हैं? जो चरणानियोग समयम यानी चरण आचरण ही है अनियोग यानी आगम, जिसमें ऐसा चरणानियोग रूपी जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में दो प्रकार का वर्णन हुआ करता है। प्रथम ग्रह मेधिन और दूसरा अनगाराणाम। ग्रह मेधिन कहलाते हैं गृहस्थ, और अनगार यानी जिनके पास आगार घर आदि नहीं है, वह कहलाते हैं अनगार यानी मुनि। इस प्रकार से गृहस्थों का जो अणुव्रत का पालन करने वाले हुआ करते हैं, उनके व्रतों का संबंध में, और जो सकल व्रत यानी महाव्रतों का धारण करते हैं, उनके बारे में जिन ग्रंथों में वर्णन हुआ करता है, उन ग्रंथों को चरणानियोग के ग्रंथ कहा जाता है। इन ग्रंथों में जीव के कल्याण के लिए कारणभूत जो व्रत आचरण हैं, वह एक देश होने से अणुव्रत कहलाते हैं और सकल देश होने से महाव्रत कहलाते हैं। ऐसे पांच पापों के त्याग रूप एक देश रूप में त्याग होने से, जिसे अणुव्रत कहते हैं, उनका वर्णन होता है। और सकल देश यानी पूर्णतः पांच पापों का त्याग होने से उसे महाव्रत कहा जाता है। अश्वहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्रि जान चारित्तम, ऐसा आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव ने अपने ग्रंथ द्रव्य संग्रह में लिखा है। वहाँ यह बताया गया है कि वह चारित्र जो अंगीकार किया जाता है उसमें प्राणी प्रति समय शुद्धोपयोग की दशा को यानी कि निर्विकल्प होकर के पूर्ण वितराग दशा को प्राप्त होते हुए भी प्रवृत्ति आत्मक जब दशा आती है तब शुभोपयोग की दशा के अवस्था में उसे कुछ प्रवृत्तियां करना पड़ती हैं, तब वह यह सजगता सावधानी रखता है कि हमारे यह दैनंदिन की जो क्रियाएं हैं या षट आवश्यक आदि का जो पालन करने के समय हैं उस समय क्रियाओं को करते समय कहीं हमारे कोई असमीचीन प्रवृत्ति न हो जाए, उस असमीचीनता से बच करके शुभात्मक प्रवृत्ति में अपने जीवन को लगाता वह चारित्र कहलाता है। ऐसे चारित्र की उत्पत्ति यानी प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है, किन कारणों से होती है, वह कारण क्या कैसे उपस्थित होते हैं, वह चरित्र की उत्पत्ति कहलाती है। और एक बार वह चरित्र की प्राप्ति होने पर उसकी वृद्धि यानी विकास कैसे हो, प्रति समय अपने परिणामों में संकलेशता से बचते हुए शुभ प्रवृत्ति करने के लिए अपने परिणामों को प्रति समय जो विशुद्ध बनाया जाता है उस विशुद्धता के कारण से प्राप्त चरित्र में शनि शनि विकास होता है और वह विकास है। कभी सात प्रतिमा तक रह करके घर में अपने व्रतों को पालन करता है। आगम में ऐसा उल्लेख है कि व्यक्ति अपने घर में रहते हुए भी 10 प्रतिमाओं का पालन कर सकता है, यह उसके अपने परिणामों की विशुद्धता और व्रतों के प्रति सजगता के ऊपर ही निर्धारित होता है, ऐसा आचार्यों का वचन है। उसी को दृष्टि में रख करके यहाँ बताया जा रहा है कि हम अपने उस आचरण को समझें, अभी जहाँ हम हैं उसमें और कैसे विकास कर सकते हैं ताकि हमारे चरित्र की वृद्धि हो सके, उसकी रक्षा हो सके। रक्षा करना भी परम आवश्यक है। जैसे आप धन संपत्ति आदि जो 12-10 प्रकार के परिग्रह हैं उनकी उत्पत्ति करते हैं, उन्हें पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, किंतु उत्पन्न करना जितना महत्वपूर्ण है उतना आप अपने जीवन में उसकी रक्षा करना भी प्रयास करते हैं। क्योंकि जो व्रत हैं आचरण हम करना चाहते हैं उसके साधनभूत कुछ निमित्त कारण अन्य बाह्य सामग्रियां भी हुआ करती हैं। शरीर का संचालन समीचीन रूप से बना रहे इसके लिए भी कुछ आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता गृहस्थ जीवन में होती है। परिवार साथ में है इसलिए परिवार का भी रक्षण हो सके उसके लिए भी कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे साधनों के होने से उनकी रक्षा भी जिस प्रकार से आप करते हैं उसी प्रकार से जो व्रत नियम आदि हैं उन व्रत नियमों को निर्दोष रूप से पालन करने के लिए आचार्यों ने कुछ उपाय मार्ग बताए हैं जिनके लिए भावनाओं का संज्ञा दी है। अगर एक एक व्रत के लिए तत्वार सूत्र जी ग्रंथ में 5-5 भावनाएं दी गई हैं, उन 5 भावनाओं को यदि साधक प्रति समय अपनी दृष्टि में रखे तो उन भावनाओं के परिणामों को भाते हुए विचार करते हुए जिनके माध्यम से हमारे व्रतों में कहीं कोई कमी आ सकती है वो दूर हो सकती है और दूर होकर के हमारा व्रत निर्दोष दृष्टि से हम पालन कर सकते हैं। ऐसा जो विचार है ऐसे जो भाव हैं वह जिन ग्रंथों से प्राप्त होते हैं उन्हें चरणानुयोग के ग्रंथ कहते हैं। ऐसे चरणानुयोग के ग्रंथ हमारे जीवन में गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति हैं वह गृहस्थोचित और जो श्रमण परंपरा को अंगीकार किए हुए हैं वह श्रमणों के योग्य व्रतों का उल्लेख करते हैं। उन ग्रंथों के पढ़ने से हमें अपने जीवन में बहुत प्रेरणा मार्गदर्शन मिल जाता है। हमारी गलती कहाँ हो रही है, उस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है और उस गलती को दूर करके अपने विकास के पथ पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यह सावधानी सजगता भी हमें इन ग्रंथों से पढ़ने और सुनने को मिलती है। आगम में ऐसे अनेक प्रसंग उपस्थित हैं जो गृहस्थ जीवन में रह करके भी अपने आप को निर्दोष बना करके व्रतों की ओर दृष्टि रखने वाले जीव हुए हैं। जैसे कि लोक प्रसिद्ध दृष्टांत है उन अंतिम श्रुत केवली जम्बू स्वामी का, मथुरा में रहने वाले मथुरा में आकर के जिनका निर्वाण हुआ है, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। धन संपदा अटूट थी, कहीं किसी प्रकार के संक्लेश या दुख के कारण उपस्थित नहीं थे, किंतु जीवन में जब वैराग का अंकुरण हो जाता है, वैसी परिस्थिति में उसे संसार की सभी वस्तुएं निस्सार सी महसूस होने लगती हैं। उस निस्तारता को दृष्टि में रखने वाला जीव फिर कभी गृहस्थ की क्रियाओं में फंसना नहीं जाता, किंतु माता पिता का भी कुछ ऐसा विशेष आग्रह, ऐसे विशेष प्रयास हुआ करते हैं कि एक ही संतान है, जहाँ तक हो सके यह भी अगर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाए तो भविष्य में हम दोनों को कुछ सहयोग मिलता रहेगा। माता पिता की भले ही भावना हुआ करती है, किंतु जो वैराग की ओर मुड़ जाता है वह सब इन बाह्य आकर्षणों में फंसना नहीं चाहता, किंतु माता पिता की ओर भी दृष्टि रहती है, इसलिए कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि उसे मजबूरी में बेमन से भी कुछ बात मान लेना पड़ती है। माँ की बहुत इच्छा थी कि यह एक अकेला पुत्र है, हमें अपने जीवन में कब बहुओं का मुख देखने को मिले, ऐसी उसकी उमंग थी और वह भावना माता ने अपने पुत्र के सामने रख दी। पुत्र ने कहा, माँ मुझे तो इस मार्ग पर नहीं अपितु मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है, इसलिए यह काम होना संभव नहीं है, किंतु यदि आपकी तीव्र भावना है उसे भी मैं पूर्ण कर दूंगा, किंतु जैसे आपकी भावना है कि बहुओं का मुख मुझे दिखा दो, दिखाने में मुझे कोई बाधा नहीं है, किंतु मेरा लक्ष्य कुछ और हो चुका है, इसलिए मैं तो यह सोचता हूँ कि ऐसा ना हो कि जो बहुएं आपके घर में आए वह फिर बाद में पछतावा को प्राप्त हों। माता कहती है कि हमने तुम्हारे जन्म होते समय ही अमुक श्रेष्ठ से ऐसा वचन दे दिया था कि यदि हमारी पुरुष संतान होगी तो, और तुम्हारे यहाँ यदि लड़कियाँ हों तो हम आपस में एक दूसरे का विवाह संबंध करेंगे। अब यदि तुम्हें हमारे वचनों की रक्षा करने का भाव हो तो ऐसा प्रयास कर सकते हो। जम्बू स्वामी ने कहा, माँ आपकी बात भले ही मैं मान लेता हूँ, एक दिन के लिए आपकी बात की पूर्ति कर सकता हूँ, किंतु मेरा लक्ष्य तो अब निश्चित हो चुका है। यदि आप विवाह करने की जिद करती ही हैं, आपकी भावना को मैं सफल कर दूंगा, किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं घर छोड़ करके वन की राह को ग्रहण कर लूंगा। माँ ने सोचा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आठ आठ ऐसी जवान कन्याओं के साथ यदि इसका विवाह हो जाएगा तो उनके रूप के आकर्षण में फंस करके यह कैसे जाएगा। कहना बहुत सरल है चला जाऊंगा, किंतु करना या जाना बहुत कठिन है। एक बार विवाह हो तो जाने दो, फिर यह अपने हाथ से बाहर जाएगा नहीं। इसलिए माता ने कहा ठीक है तुम एक दिन के लिए ही सही किंतु विवाह तो निश्चित कर लो। मां की आज्ञा थी इसलिए वह स्वीकार करके आठों बहुएं घर में आ गईं। किंतु जिसका भाव उन बहुओं के प्रति नहीं था उनके साथ में बैठकर के भी वह तत्व चर्चा कर रहा है, उन्हें ही समझा रहा है कि देखो तुम लोगों को ऐसा संयोग भले ही मिल गया है इस शरीर के साथ में विवाह संबंध करने का, किंतु यह विवाह तो उपचार से बाहर रूप से हुआ है, हमने तो उस मोक्ष रूपी लक्ष्मी से विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारे साथ में तुम लोगों के साथ में जो यह संबंध हुआ है एक रात का संबंध है। वह भी जानती थी कि एक रात के लिए ही अनुमति मिली है, किंतु ऐसा कैसे संभव है कि एक नहीं दो नहीं आठ आठ के रहते हुए यह मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाए। रात भर प्रयास चलता रहा किंतु जो अपने लक्ष्य पर दृढ़ बन चुके थे उन्होंने प्रातः होते ही वैराग के पथ पर अपने पथ बढ़ा लिए। तब उन कन्याओं ने जो अब कन्या नहीं उसकी पत्नी बन चुकी थीं, उन्होंने भी निश्चय किया कि जो पति ने मार्ग को धारण किया है वह मार्ग भी धारण करना श्रेष्ठ है, इसलिए उन पत्नियों ने भी जम्बू स्वामी के पद का ही अनुसरण करके अपने कल्याण को सुनिश्चित किया। ऐसी कथाएं इन ग्रंथों में हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं, जिनसे हमें यह प्रेरणा मिल सकती है मिलती है कि हमारा यह जो जीवन है मनुष्य का पर्याय हमें प्राप्त हुई है बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई है, और इसके प्राप्त होने के बाद भी हमें संयोग से जिन धर्म की प्राप्ति हुई है जिन धर्म की शरण मिली हुई है उस शरण को हम सार्थक बनाएं और अपने जीवन में यथासंभव जितने व्रतों का आचरण आप कर रहे हैं उसमें कैसे वृद्धि हो उनका विकास हो, और विकास करके आप अणुव्रतों में प्रतिमाओं के अंगीकार करते हुए अपने चरम लक्ष्य जो मोक्ष सुख है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकें, यही इस ग्रंथों को पढ़ने की सार्थकता है। बोलिए महावीर भगवान की।
बोलिए देवाई देवघाट श्री हरनाथ भगवान की जय। पूज्य मुनि श्री छिन्नसागर जी महाराज की धर्म देशना सुनेंगे। इसके पूर्व हमारे बीच एक महान विभूति जो झूठ और सत्य के लिए मार्ग तराजू को तोलकर अपना डिसीजन देती है हमारे बीच उपस्थित हैं परम सम्माननीय आरो न्यायालय के जज साहब श्री ओबी मॉडल साहब, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर, एवं श्रीमती जी भी उपस्थित हैं हमारे बीच वो भी आए और पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। आदरणीय जज साहब एवं श्रीमती जी जज, बोली देवाई देव धनर आठ श्री आदिनाथ भगवान की जय। श्रीमती जी भी आ जाए पूज्य मुनिराज के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। बोली संसार मुनि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोली परम पूज्य स्वर श्री छिन्नसागर जी महाराज की जय। बोली संघ की जय। बोली संघ की जय। और दिगंबर जैन समाज आ रहे हैं परम सम्मानित जज साहब को हार्दिक अभिनंदन करती है एवं स्वागत करती है। दिगंबर जैन समाज आ रहा हूँ आदरणीय जज साहब का सम्मान करना चाहती है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ पर आए और समाज का सम्मान स्वीकार करने की कृपा करें। आदरणीय जज साहब एवं श्रीमती जी यहाँ आए और सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ देशराज जी जैन कलेशिया यहाँ पर आए और परम सम्मानित जज साहब का तिलक लगा कर एवं श्रीफल भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। आदरणीय जज साहब आए एवं श्रीमती जी भी यहाँ पर आए और इनका सम्मान करने के लिए महिला वर्ग से कोई महिला आ जाए, महिला मंडल की अध्यक्ष आए हुए श्रीमती अभिलाषा जी आ जाए और श्रीमती जी जज साहब का तिलक लगाकर सम्मान करने की कृपा करें। श्री पल वही परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री श्याम सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय, मुनि संघ की। लीजिए आप श्रीमती जी श्रीपल मैडम बोली परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, बोली परम पूजा स्वर श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री बब्बे सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री अवर सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। और ये पुस्तक पूज मुनि श्री जिसमें पूज मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी की वाणी का समावेश है 16 करण भावना, और परम आदरणीय जज साहब को भेंट करना चाहते हैं। जज साहब आए और यहाँ पर आदरणीय महामंत्री जी हमारे श्री सुरेंद्र कुमार जी आए और आदरणीय जज साहब के लिए ये 16 करण भावना भेंट करने की कृपा करें। आदरणीय जज साहब आदरणीय जज साहब एक आदर्शवादी और सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं तथा एक न्यायाधीश ही नहीं है, वो एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। जब जब भी हमारे कार्यक्रम में उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उनसे निवेदन करने के पश्चात तत्काल हमारे बीच उपस्थित होते हैं और हमारे कार्यक्रमों को हमारे कार्यक्रम सफल बनाने में वो अपना पूरा सहयोग देते हैं। अब पूज मुनिराज की मंगलवाणी सुनो, इसके पूर्व पूज मुनिराज के समय में दो पंक्ति समाप्त करूंगा। पूज मुनि क्षमा सागर जी महाराज के गुणों का मैं किस तरह वर्णन करूं, पूज गुरुवर के गुणों का मैं किस तरह वर्णन करूं, और शब्द अपने नौ तक मैं कौन सी उपमा धरूं। अरे चांद की उपमा धरूं तो उसमें भी दाग है, चांद की उपमा धरूं तो उसमें भी दाग है, और सूर्य की उपमा धरूं तो उसमें भी आग है। और पूज गुरुवर क्षमा सागर जी महाराज तो ऐसे हैं, पूज गुरुवर क्षमा सागर जी महाराज तो ऐसे हैं, ना दाग है ना आग है, वैराग्य वैराग्य वैराग्य। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सकल दिगंबर जैन समाजारों की ओर से, भारतीय पदारी अतिथियों की ओर से, माता बहनों की ओर से, पूज्य महामुनिराज परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी आत्मकल्याणी वाणी के माध्यम से हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी
वीतराग विज्ञान नमोता ए जाते वै अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधि हैं इत्यसी शुद्धात्मे निरत हेतुपदेश में पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयान है पूजू मुने सदत केवल ज्ञान पान पूजू मुने सदत केवल ज्ञान पान। बोले भगवान महावीर स्वामी के आचार्य कुंत कुंत स्वामी के आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज के अगर हम अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारा सोच अच्छा हो, हमारा देखना नजरिया सकारात्मक हो। एक एक व्यक्ति के पास कुत्ता था, वो कुत्ता पानी में चल लेता था तो लोग उसको देख करके बहुत चकित हो जाते थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसे से जो बोले कि कुत्ते में कोई विशेषता नहीं है, वो पानी में चल तो लेता लेकिन तैर नहीं पाता, उनने तो उसकी कमी ही देखी, उसमें पानी में तैर नहीं पाता। इस प्रकार वस्तु में अच्छाई भी और बुराई भी, हमारा कर्तव्य है कि हम अच्छाई की तरफ ध्यान दें, बुराई को ना देखें। अच्छा काम करने के लिए हम अच्छे काम को करने से बचे नहीं, उसे टालने की कोशिश ना करें। साथ ही जिस व्यक्ति ने हमारे पर उपकार किया उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करें, और लगातार ज्ञान पाने की तलक, हमेशा ज्ञानवान होने की, ऐसी चीजें जहाँ से ज्ञान प्राप्त हो सकता है उसको पाने की तलक हो, और स्वयं का जीवन अच्छा बनाए और बुरी बातों से और बुरे लोगों से आप प्रभावित रहें, उनसे प्रभावित ना हो, इस प्रकार अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और तीन चीज़ें एनवायरमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ये तीन चीज़ें अपने जीवन में आएँ। एनवायरमेंट जो परिस्थितियां अपने सामने निर्मित होती उन परिस्थितियों में सब अच्छी चीज़ को ग्रहण कर लें, बुरी चीज़ को छोड़ दें। एक्सपीरियंस अपना अनुभव भी अच्छा ही हो बुरा ना हो, एजुकेशन ज्ञान भी इस प्रकार प्राप्त करें जिससे अपना आत्मा का कल्याण हो, जीवों का कल्याण हो, ऐसा एजुकेशन भी इस प्रकार। क्या हुआ, एक बार एक किसान था, वो बहुत संतोषपूर्वक अपना जीवन जीता था। एक बार उसके एक व्यक्ति आया, उसके हाथ में हीरा था। उस व्यक्ति ने किसान को बताया कि ऐसा हीरा बहुत कीमती है, तो बोले ऐसा अगर हथेली में आने लायक इतना बड़ा हीरा तुम्हारे पास हो तो तुम बहुत धनवान हो जाओ। ये बात किसान ने सुन करके उसके भीतर असंतोष जाग गया, हीरे को प्राप्त करने की भावना उत्पन्न हो गई, उसका आनंद खो गया। वो पहले संतोष ही था तो बहुत आनंद था, लेकिन असंतोष को चिंता की वजह से उसका आनंद खो गया। उसने उसने सोचा कि हमें हीरा प्राप्त करना चाहिए। उसने अपना खेत बेच दिया और हीरे की खोज में निकल गया। हीरे की खोज खोजते खोजते उसके पास जितने पैसे थे वो सब खर्च हो गए और हीरा नहीं मिला, तो उसने उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए वो खेत बेच कर गया था, वो व्यक्ति एक बार नाले की तरफ गया। नाले में उसने खुदाई की, तो खुदाई के समय उसको चमकीला पत्थर मिला। वो अपने घर ले आया, वहाँ पर वो व्यक्ति जिसने हीरे की परख करी थी वो व्यक्ति उसके पास आया। उसने पूछा कि ये पत्थर कहाँ से लाए। कहने लगा ये पत्थर तो हमारी नहर में बहुत सारे पड़े हैं। तो उसने कहा ये तो हीरे हैं, मैंने इतने पास अपने खेत में हीरे थे और वो पहचान नहीं पाया और संसार में भटकता रहा और असंतोष उसने पाया, चिंतित रहा हमेशा। इस प्रकार से अगर हम अपने पास जो है उसको देखें, उसमें संतोष रहें, संतोष रखें, तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। हम जो चीज़ हमारे पास हमें नहीं मिली उसकी तरफ देखते हैं और असंतोष हो जाते, हम अपने आप से संतुष्ट नहीं है। बात हमें जो मिला उसमें हम संतुष्ट रहें और अच्छा देखें कि हमारे पास तो बहुत है, हमें और आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार नहीं तो क्या होता कि व्यक्ति के पास कोई चीज़ कमी हो तो हमेशा उसी के रोना रोता रहता कि हमारे पास ये चीज़ नहीं, हमारे पास ये चीज़ नहीं। अरे भाई तुम्हारे पास कितनी चीज़ें हैं, मैं तो देखो तुम कि हमारे पास तो इतनी चीज़, हम तो धनवान हैं। दूसरे के सामने यही कहो कि हमारे पास तो बहुत है, सब अच्छा है, हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता नहीं करें तो अपना जीवन अच्छा बन सकता। इस प्रकार सकारात्मक सोच, दो प्रकार का सोच। एक एक बगीचे में एक मक्खी आती, मक्खी सड़ी गली जितनी चीज़ें हैं उनके ऊपर बैठ जाती और भरा जाता वो फूल हमें से रस ले आता। जबकि बगीचा एक ही हो, दो लोग अलग अलग जाने वाले, तो आपको मक्खी की तरह बनना है, मक्खी भौर की तरह अच्छी चीज़ को ग्रहण करना है, मक्खी की तरह सड़ी गली चीज़ों पर बैठ जाए। रेत में बहुत सारी रेत में शक्कर की दो दाने भी छुपा के रख दो रेत के भीतर, तब भी चीटी जाएगी, रेत से कुछ नहीं बोली लेकिन उसमें शक्कर के दाने खोज के ले आएगी। ये होना चाहिए, मैंने बुराई में से हम अच्छी चीज़ को निकाल सकें और अच्छाई और बुराई में से हम हमेशा अच्छी चीज़ को ग्रहण कर सकें, ये हमारी भावना होनी चाहिए। इसी भावना से हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। आचार्य विद्यासागर होना चाहिए।
हे गुरु वर शाश्वत सुख दर सत्य मग्न स्वरूप तुम्हारा, जब जग विषया रच पच कर
प्रणाम प्रणाम। उदक चंदन तांदुल पोषे चर सुदीप सुधूपल अर्घ कई धवल मंगल जी। ओम श्री अमरकंटक विराजमान संत सर्वमान्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी संघस्थ आरण नगर के जन्म मंदिर जी विराजमान महामुनिराज पूज मुनि श्री क्षम सागर जी महाराज जी मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज जी मुनि श्री हर सागर जी महाराज जी मुनि श्री श्रीराम सागर जी महाराज जी इनके चरणार बिंदुओं को अनागत प्राप्त है। बोली दादा संग जनवानी माता की जय। बोली संसार मन आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की मुनि संघ की सकल दिगंबर जैन समाधान को सूचित किया जाता है कि पूज्य मुनि श्री द्वारा संघ समाधान की क्लास ठीक 3:30 बजे से नियमित रूप से प्रारंभ हो जाती है। सभी धर्मपति बंधुओं से अनुरोध है अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की कृपा करें एवं पाठशाला ठीक 7:30 बजे से नियत रूप से प्रतिदिन लगा करेगी। सभी बालक एवं बालिकाओं से अनुरोध है ठीक समय पर पाठशाला में उपस्थित होकर ज्ञान अर्जन करने की कृपा करें। भारत पधारी अतिथियों का दिगंबर जैन समाज आरोन हार्दिक स्वागत करती है हार्दिक अभिनंदन करती है। भारत पधारी अतिथियों की आतिथ्य की व्यवस्था पार्श्वनाथ दिगंबर जैन धर्मशाला पर रखी गई है। सभी साधारणी भारत पधारी अतिथि के मन से अनुरोध है एवं महीने भर से अनुरोध है कि हमारे आतिथ्य को स्वीकार कर भोजनशाला में पहुँच कर उन्हें ग्रहण करने की कृपा करेंगे ठीक मुनि श्री के आरंभ पश्चात सकल दिगंबर जैन समाधान को सूचित किया जाता है। पूर्व मुनि श्री द्वारा संघ समाधान की क्लास 3:30 बजे से प्रारंभ हो जाया करेगी अतः सभी साधारण बंधुगण ठीक समय पर उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की कृपा करें एवं पाठशाला ठीक 7:30 बजे शाम को नियत रूप से लगा करेगी। सभी लोग बालक एवं बालिका उपस्थित होकर ज्ञान अर्जन करने की कृपा करें। सकल दिगंबर जैन समाज आरण को सूचित किया जाता है चिकनगुनिया के पेशेंट रोगी एवं अन्य फीवर के रोगी उनसे अनुरोध है कि वो पूज्य मुनि श्री के चरण स्पर्श किसी प्रकार से न करें और न ही ऐसे लोग किसी मुनि राज्य के लिए हार देने की कृपा करें।
क्रियाएं तो लिखी है कि जे जे पालन करना लेकिन अंतरंग के परिणाम कैसे होना चाहिए समंत भद्र स्वामी ने एक ही कारिका में स्पष्ट कह दिया कि संसार शरीर और भोगों से निर्भिन्न है उदासीन है और पंच गुरु की शरण जिसको है 5 अनुव्रतों का पालन करता है लेकिन महत्वपूर्ण है उसकी संसार शरीर भोगों से अनाशक्ति और पंच परमेष्ठी की शरण। यहां वहां सबकी शरण नहीं मानता, वो संसार में कोई और शरण है नहीं है, पंच परमेष्ठी के अलावा कौन शरण है जो मुझे इस संसार के जन्म मरण से बचा सकता, मुझे मृत्यु से तो कोई नहीं बचा सकता, पर मुझे संसार के जन्म मरण से बचाने वाले हैं अगर तो चतारी शरणम पवज्जामि, वो चार ही शरण हैं जिनको कि मैं ग्रहण करूं। तो ऐसे पंच परमेष्ठी की शरण लेता है उस संसार शरीर भोगों के प्रति अहम शून्य होकर के अपना कर्तव्य मान करके घर गृहस्थी के कार्य करता है, लोलुपता और आकुलता नहीं होती धन पैसे कमाने की कि अनुव्रत भले ही ले लिए लेकिन अभी लोलुपता ज्यों की त्यों बनी हुई है, संसार के कार्यों में रुचि है, संसार बढ़ाने में रुचि है नहीं। पांच अनुव्रत ग्रहण करता है और संसार को घटाने के लिए प्रयत्न करता है, विचार करता है कि कैसे अपना संसार समेटूं, जैसे किसी को संजय को दुकान बंद करने हो और ग्राहक की लाइन लगी हो तो जल्दी जल्दी निपटा के भैया हमें तो दुकान बढ़ाऊंगे अब बंद कर दो को टेम हो गो अब नहीं दे रहे हम कल दे हैं। और अपना दुकान ही जिसको पूरी तरह से समाप्त करनी हो तो सबरा सामान आधे धोधे में बेच करके और खाली कर देता है और नया नहीं ला के रखता, सजाता नहीं दुकान को, बढ़ाता नहीं उसको, उसे तो घटाना है। ऐसे ही शहवत के भीतर व्रत ग्रहण करने के उपरांत संसार शरीर और विभोगों के प्रति विरक्ति आ जाती है, अहंकार उसका नष्ट हो जाता है, तब फिर वो अपने पांच अनुव्रतों को और तीन मकार का त्याग करके आठ मूलगुण का पालन करता है, 22 अभक्षों का त्याग कर देता है, सप्त व्यसन का त्याग तो किया ही उसने, जो श्रावक के पांच कर्तव्य हैं और छह आवश्यक हैं उन सब का जैसा उल्लेख आचार्य ने किया है वैसा बाहर से पालन करना शुरू कर देता है। काहे के लिए, मेरी सारी घर गृहस्थी की क्रिया अहम शून्य हो जाए, उसमें कषायें बढ़े नहीं बल्कि घट जावे, उद्देश्य निरंतर ध्यान में रहता है। अकेले पांच पाप छोड़ दिए, 22 अभक्ष नहीं खा, थाली पे बिल्कुल शुद्ध सोला को बना के खा रहे लेकिन भीतर तो गैर सोला के भाव है, अब बताओ कसाय भाव सोला कहेगा नहीं, तो मेरे अंदर तो कसाय भाव है ऐसा विचार करता तो मेरा सोला तो बिगड़ गया, भले मैंने सोला का भोजन किया हो, मैंने शुद्ध भोजन किया हो लेकिन मेरे भीतर शुद्धि कितनी आई, ये निर्णय